ओम शांति। पंद्रह नंबर के रजिस्टर में 108 पेज, 9/2/88 का प्रातः क्लास, हेडिंग दिया है मीठे बच्चे किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है। देह सहित सबसे पूरा बैगल बनना है। शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करते रहना। ओम शांति। बाप दादा और मम्मा, मम्माएं दो होती हैं, दादी और माता। तो बाप कौन हुआ, दादा कौन हुआ, मम्मा कौन हुई और दादी अम्मा कौन हुई? यह तुम्हारी बड़ी माँ है। कौन? ब्रह्मा, दाढ़ी मूछ वाली। तन पुरुष का है ना? जब तन पुरुष का है तो बड़ी अम्मा कैसे हुई? टाइटल हो सकता है लेकिन ये हो सकता है कि माँ शरीर छोड़ दे तो जो बड़ा भाई है वो माँ का कर्तव्य निभाए, बाप शरीर छोड़ दे तो बड़ा भाई बाप समान बन करके बाप का कर्तव्य निभाए। टाइटल और कर्तव्य को अपने ऊपर धारण कर ले तो वो तो ब्रह्मा बाबा ने बखूबी निभाया, क्योंकि यज्ञ के आदि में ऐसे भी बच्चे थे जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे, शिव बाबा उनमें प्रवेश करते थे और बोला हम उन्हीं के डायरेक्शन पर चलते थे। कौन चलते थे? ब्रह्मा के मुख से बोला तो ब्रह्मा सरस्वती उनके डायरेक्शन पर चलते भी थे। तो ऐसी सशक्त आत्माएं जो मम्मा बाबा को भी अपने कंट्रोल में चलाती थी, वो तो उनसे भी ज्यादा ऊंची हो गई। तो जो आदमी सो अंत में जरूर होंगे। तो मम्माएं दो होती हैं, कौन कौन सी दो माताएं? बेहद के बाप दो हैं तो माताएं भी दो हैं। बेहद के दो बाप कौन? एक आत्माओं का पिता और दूसरा मनुष्यों का पिता। आखिर मनुष्यों में तो ब्रह्मा टाइटलधारी जो पुरुषतन था वो वास्तव में माता का रूप नहीं था। मुरली में भी बाबा ने बोला है वास्तव में तुम्हारी बड़ी मम्मा ये ब्रह्मा है परंतु तन पुरुष का है। तो माताओं के चार्ज में इनको कैसे रखा जाए? तो मम्मा निमित्त बनी हुई है। तो वो तो हो गई छोटी माँ, मम्मा। और मम्मा तो सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी तो बीच में आती है और बीच में ही लोप हो जाती। आदि रतन नहीं, आदि रत्नों में जो आत्माएं थी वो तो जरूर जगत पिता जगदम्बा होंगे, जो यज्ञ के आदि में भी ब्रह्मा और सरस्वती को भी कंट्रोल करते थे, क्योंकि पहले होता है बाप, फिर होती है माता, फिर होता है बच्चा और बच्ची। तो गीता प्रतिशु भगवान पहले चाहिए बाप, फिर चाहिए गीता माता, फिर होना चाहिए कृष्ण बच्चा और फिर राधा बच्ची। तो यज्ञ के आदि में ये आत्माएं वर्क कर रही थी, तो उनमें एक है बाप और एक है दादा। बड़े भाई को दादा कहा जाता है और बाप वो आदि व्यक्तित्व हो गया जिसमें परमात्मा ने पहले पहले प्रवेश करके ब्रह्मा के साक्षात्कारों का क्लेरिफिकेशन दिया। आदि माता के द्वारा किसको क्लेरिफिकेशन दिया? ब्रह्मा को। तो जगत पिता कहो या विश्व पिता कहो, वो आदि व्यक्ति हुआ जिसमें परमात्मा ने पहले पहले प्रवेश किया, वो हुआ बाप। और दादा, जिसको क्लेरिफिकेशन दिया गया, जो पहला पहला बच्चा बना गीता माता का, तो वो हो गया बड़ा भाई, वो हो गया दादा। बाप ऐसे नहीं सिर्फ ज्योति बिंदु, मनुष्य सृष्टि का बाप साकार रूप में होगा या निराकार होगा?
साकार रूप में होगा,
क्योंकि मनुष्य है साकार, मनुष्य सृष्टि है साकार, तो मनुष्य सृष्टि का बाप भी साकार में चाहिए। लेकिन वो तब तक साकार बाप नहीं जब तक सुप्रीम सोल उसमें प्रवेश न करे। उसके प्रवेश करने से ही ज्ञान का बीज रोपण होता है, क्योंकि इस सृष्टि में ज्ञान माने जान, जानकारी, सच्ची जानकारी किसी को नहीं है। ए टू जेड आदि पिता एडम या आदम से लेकर के 500 करोड़ भी मनुष्य आत्मा तक, इस सृष्टि की सच्ची जानकारी किसी के पास नहीं, सच्चा ज्ञान किसी के पास नहीं। तो वो परम पिता परमात्मा स्वयं प्रवेश करके सच्चा ज्ञान देता है। तो ब्रह्मा को जो साक्षात्कार हुए उसका ज्ञान, उसकी जानकारी परमात्मा शिव ने साकार में मुख द्वारा दी। तो बाप और दादा तो क्लियर हुए, और मम्मा मम्माएं दो हो गई, एक तो टाइटलधारी माँ जो सरस्वती बाद में आई, लेकिन उससे भी पहले कोई मम्मा थी जिसके थ्रू कृष्ण को जन्म मिलता है। यानी दादा लेखराज वाली आत्मा को अपने अंदर निश्चय बैठता है कि मैं कृष्ण की सोल हूं, क्योंकि कृष्ण बच्चा तो माता से ही जन्म लेगा। माता कोई जड़ किताब का नाम नहीं है। गीता माता जो सब शास्त्रों की मूल है, जिसका गायन है, जिसका गीत गाया भगवान ने प्योरिटी का, तो वो गीत माना गीता, वो हो गई बड़ी माता। और बाद में मम्मा हुई छोटी माता। तो मम्माएं दो होती हैं, दादी और माता। ये तुम्हारी बड़ी माँ है, कौन यह है? यह कहते हैं तो किधर इशारा होगा? बाजू में जो बैठा हुआ है शिव बाप, ब्रह्मा में प्रवेश करते थे तो ब्रह्मा की सोल कहाँ होती थी? बाजू में। ये तो पास्ट की बात हो गई, अब तो मम्मा बाबा की बात नहीं रही, अब तो न अम्मा न बाप, अब तो हम ही सर्वे सर्वा हैं। हम ही स्वर्ग के रचयिता हैं। वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी वसुधा कुटुंब है। इस कुटुंब के कर्ता धर्ता कौन है? हैं? हम ब्रह्मा कुमार कुमारी। माता पिता की कोई जरूरत नहीं है, हम खुद ही स्वर्ग की रचना कर लेंगे। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। गायन है तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा के सुख घनेरे। स्वर्ग के सुख ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे, क्योंकि स्वर्ग की दुनिया है प्रवृत्ति मार्ग की दुनिया। प्रवृत्ति मार्ग के सुखों को स्थापन करने वाला भी कौन होगा? प्रवृत्ति मार्ग वाला भी होगा। प्रवृत्ति मार्ग वाला ही प्रवृत्ति मार्ग वालों को प्रवृत्ति मार्ग का सहज राजयोग सिखा सकता है। जो निवृत्ति मार्ग का हो वो प्रवृत्ति मार्ग वालों को राजयोग नहीं सिखा सकता। इसलिए मुरली में बोला है कि जानते नहीं है कि बाप ने प्रवृत्ति में आकर के राजयोग सिखाया है। तो बच्चों को संभालने के लिए जगदम्बा निमित्त बनी हुई है। किसकी अम्बा? जगत की अम्बा। जगत में कितने हैं मनुष्य? 500 करोड़ मनुष्य। तो यह तुम्हारी बड़ी माँ है, तो वो तो ब्रह्मा की तरफ इशारा हुआ, कृष्ण की सोल की तरफ इशारा हुआ, दादा लेखराज की सोल की तरफ इशारा हुआ। जो बाजू में बैठी हुई आत्मा है वो तो पास्ट की बात हो गई, अब अभी वैसे ही है। अब अम्मा बाप हैं या नहीं हैं? अब बच्चों की पालना करने वाले कौन?
मम्मा बाबा।
वर्षा देने वाले कौन? तो मात पिता तो चाहिए ना। हर मुरली में अंत में कहा जाता है मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। अलग अलग क्यों कह देते हैं? अगर द सेम सोल है फिर अलग अलग कहने की क्या दरकार? अलग अलग शब्द क्यों बोले? जरूर व्यक्तित्व तो अलग अलग है। माता पिता जब कहा जाता है तो स्त्री चोला और पुरुष चोला होना चाहिए, और बाप दादा कंबाइंड होते। कंबाइंड का मतलब बाप में दादा की सोल भी प्रवेश करके कार्य करती है, या दादा में बाप प्रवेश करके कार्य करता, ये पास्ट की बात है। तो बाप दादा और मम्मा बच्चों के संभालने के लिए जगदम्बा निमित्त है, शिव बाबा है बहुरूपी, वो बहुत खेल पाल करते हैं। क्या खेल पाल करते हैं? स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाई देते हैं। दादा लेख राज कीर्तन में ब्रह्मा क्या हुआ? पुरुष तन हो गया, तो स्त्री को क्या बनाई दिया? पुरुष रूप बनाई दिया। और फिर वही ब्रह्मा की सोल शरीर छोड़ती है तो जो आदि माता है उसमें प्रवेश करके कार्य करती है। आदि माता ही शरीर छोड़ने के बाद कहीं दूसरी जगह जन्म लेती और उसमें ब्रह्मा की सोल प्रवेश करके कार्य करती है तो स्त्री रूप हो जाता। तो ब्रह्मा कभी पुरुष रूप और कभी स्त्री रूप, अर्थ एक ही है। ब्रह्मा, ब्रह्मा ने बड़ी माँ माने माँ, और जगदम्बा माने जगत की माँ माने बड़ी माँ। तो शिव बाबा बहुरूपी है, वो बहुत खेल पाल करते हैं। सुहेज होते हैं ना, जब सगाई होती है तो भी सुहेज करते हैं, और जब शादी का समय होता है तो दोनों फटे हुए कपड़े पहनते हैं, तेल लगाते हैं। ये रस्म भी यहाँ की है। तेल कौन सा लगाते हैं? है? तेल चिकना होता है, और स्नेह और प्यार भी कैसा होता है? चिकना होता है। स्नेह प्यार में भी चिकनापन होता है, खुर्रापना नहीं होता। तो फटे हुए कपड़े पहनते और तेल लगाते हैं, माना स्नेह का तेल। बाप के स्नेह का तेल लगाते और फटे हुए कपड़े, माना कौन सा कपड़ा? ये शरीर रूपी पुराना वस्त्र, पुराना चोला पहनते। तो तुम बच्चों को भी बाप समझाते हैं कि पूरा बैगर बनना है। इससे कनेक्शन क्या हुआ कि जैसे माँ बाप का पार्ट पूरा बैगर बनने का है, फुल बैगर टू फुल प्रिंस, वैसे तुम बच्चों को भी फाल फादर करना है। तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा में स्वाहा करने के बाद मेरा कुछ भी नहीं, क्योंकि बोला है जब तक फुल बैगर नहीं बने हैं तब तक फुल प्रिंस नहीं बन सकते। कुछ भी नहीं होगा तो सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए दत्तवाणी में भी बोला, अब देखेंगे कि राग कौन बनते हैं और कितने बनते हैं, और कोटों में से एक राग बनने वाले, लाखों में से एक भस्म बनने वाले कौन निकलते हैं, वो भी देखेंगे। तो आजकल के साधु संत क्या करने लगे, शरीर के ऊपर उन्होंने राख मलना शुरू कर दिया। तो शरीर के ऊपर राख मलने की बात नहीं है, बात है राख बनने की, कि मेरा तो कुछ नहीं, सब कुछ तेरा हो गया, फुल पैगर बनना है। देह सहित तो कुछ भी न रहे, शिवपुरी विष्णुपुरी तरफ बुद्धि योग लगाना है, और कोई भी चीज में आसक्ति न हो। पवित्र भी जरूर बनना है। देखो मीरा का कितना गायन है, गायन सिर्फ क्यों बताया, पूजन की बात क्यों नहीं उठाई। मीरा के मंदिर नहीं बनाए जाते, लेकिन गायन गायन खूब है। लोक लाज खोई, सिर्फ इस पवित्रता के कारण कितना नाम निकला है। उनको तो ज्ञानामृत भी नहीं मिला, किनको, कलयुग के मध्य में जो मीरा हुई तुलसीदास सूरदास के जमाने में, तो उनको तो परमात्मा का ज्ञानामृत नहीं मिला, सिर्फ कृष्ण से प्रीति थी। कृष्णपुरी में जाने के लिए उन्होंने विख त्याग दिया। विख किसे कहते हैं, काम विकार को विख कहा जाता है, लेकिन काम विकार विख, क्या कामना सतयुग में नहीं होती, सतयुग में बच्चे पैदा नहीं होते क्या, स्नेह लेने की इच्छा नहीं होती वहाँ क्या। हाँ वहाँ स्नेह तो होता है, लेकिन श्रेष्ठ इंद्रियों का स्नेह होता है, और स्नेह भी ऐसा पवित्र और शुद्ध होता है कि अव्यभिचारी स्नेह होता है, ऐसे नहीं कि वहाँ स्त्री पुरुष का प्यार नहीं होता। प्यार तो शरीर के अंगों द्वारा ही होगा, लेकिन भ्रष्ट इंद्रियों से वहाँ प्यार नहीं होता। जो श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, मुख की पैदाइश वहाँ होती है। दूसरी बात, विख कहा जाता है पर पुरुष या पर स्त्री के संग को। वहाँ सतयुग त्रेता में विख नहीं होता, राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबेगी और कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबेगी, तो उसको विषैली दृष्टि कहें या श्रेष्ठ दृष्टि कहें, वो विषैली दृष्टि नहीं हुई। विषय वासना कहा ही जाता है जहाँ व्यभिचार हो, तो उसने तो कृष्ण को मान लिया अपना पति, किसने, मीरा ने। तो जब कृष्ण को अपना पति मान लिया तो कृष्ण के सिवाय और किसी के साथ वो कैसे संबंध संपर्क जोड़ सकती है, क्योंकि संबंध जो अनेक प्रकार की रसना देने वाले हैं, उनका संबंध तो कर्मेंद्रियों से ही होता है। वही आंख अपनी बच्ची को भी देखती है, और वही आंख स्त्री को भी देखती है, फर्क क्या पड़ जाता है? भावना का और देखने देखने का फर्क पड़ गया। तो बिखर को छोड़ दिया मीरा ने, जैसे स्त्री पति के पिछाड़ी सती बन जाती है ना, पति मर जाता है तो स्त्री अपना शरीर चोला छोड़ देती है, किस चोले को कोई दूसरा हाथ से ही न लगा सके। तो अब ऐसे नहीं कि मीरा याद करते करते कोई कृष्णपुरी में चली गई, उस समय तो कृष्णपुरी होने की बात थी नहीं, कृष्णपुरी तो थी ही नहीं। मीरा को 500-700 वर्ष हुए होंगे, भक्तिन बहुत अच्छी थी, इसलिए कोई अच्छे भक्त के घर में जन्म लिया होगा। उनका नामाचार कितना चला आता है, वो तो मीरा भक्तिन थी, वो भक्तिन थी, और तुम सभी ज्ञान मीराएं बनती हो। तुम आए हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी महारानी बनने के लिए, बल पहले अनपढ़े पढ़े आगे भरी ढोते हैं, ये तो होता है कि जो ज्यादा पढ़ते हैं वो साहब बनते हैं और जो कम पढ़ते हैं उनको वजन उठाना पड़ता है, भरी ढोनी पड़ती है, परंतु महारानी तो बनेंगे ना। अगर बचपन को भूल हाथ छोड़ दिया तो फिर कभी नहीं महारानी बनेगी, और ही प्रजा में भी कम पद पावेंगी। इसके लिए कहा, ये बात किसके लिए कही? ज्ञान मीराओं के लिए। नंबर वार बैकुंठ में तो आएंगे परंतु कम पद। बाबा ने समझाया है, भक्ति करने वालों से पूछना चाहिए तुम क्या चाहते हो, कृष्ण की भक्ति क्यों करते हो, जरूर दिल होगी कि इनकी राजधानी में जाएं, परंतु वहां जाएंगे कैसे? बहुत मनुष्य कहते हैं हमको शांति चाहिए, परंतु अशांति तो सारी दुनिया में है ना। तुम एक को शांति मिलने से क्या होगा, हम तुमको 21 जन्मों के लिए सदैव सुखी बना सकते हैं। देवताएं इस भारत में ही सदा सुखी थे, अब वो देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है, यहां तो है ही माया का राज्य, शांति मिल नहीं सकती। शांति के लिए अलग जगह है और सुख के लिए अलग जगह है। सुख धाम में सब सुखी होते, एक भी वहां कोई दुखी नहीं रहता, और दुख धाम में फिर एक भी सुखी नहीं रहता। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब दुखी दुखी है। सुख धाम में कभी जानवर भी दुख नहीं पाते हैं, तो शांति की दुनिया अलग है, सुख की दुनिया अलग है, और दुख की दुनिया अलग है। शांति की दुनिया जिसे निर्वाण धाम कहते हैं, क्यों कहते हैं निर्वाण धाम?
शांति जो मिले,
शांति जब परम शांति मिल जाए तो वाचा चलाने की दरकार ही नहीं। वाणी से परे की स्टेज वानप्रस्थी स्टेज बन जाए। कहते हैं फलाना निर्वाण धाम गया, परंतु गया तो कोई भी नहीं है। अगर खुद चला गया होता तो फिर वो करके क्या गया है, तो सब दुखी ही दुखी। कितने लड़ाई झगड़े हैं, वो कहते हमारे देश से हिंदू निकल जाए, वो कहते फलाने निकल जाए, तो एक दो को सहन नहीं कर सकते हैं। कहाँ की बात है, बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया की भी बात है यही, क्योंकि यहाँ शूटिंग हो रही है। क्या शूटिंग हो रही है, है? हद की दुनिया में क्या होता है, एक दूसरे को लात मार करके निकालते रहते हैं। सत्संग की बजाय क्या हो जाता है, लत संग। तुम अपने सत्संग में जाओ, हमारे में क्यों आ गए? तुम अपने देश में जाओ, हमारे देश में क्यों आ गए? है तो पूर्व जन्मों के हिसाब किताब क्या? अगर किसी को कहीं से धक्का मिलता है, कोई प्यार से कहीं पहुंचता है, किसी के घर पहुंचता है या स्थान पर पहुंचता है और वहां से उसको धक्का मिलता है, भागो यहां से, तो है तो पूर्व जन्म का हिसाब किताब। पूर्व जन्म ने राजाओं ने क्या किया है? जब राजा बने तो राजा बन के अहंकार में आकर के अपने राज्य से बाहर निकाल दिया, तो इतना बड़ा विक्रम कर दिया, बेचारा घर घाट छोड़ करके राज्य से बाहर निकल गया, अपनी हद से बाहर निकल दिया। तो यहाँ तो होता है सूली से कांटा, हिसाब किताब तो पूरा होगा, लेकिन ज्ञान की वजह से, ईश्वर के बच्चे बनने की वजह से होनी तो चाहिए सूली। इतना बड़ा विक्रम किया लेकिन सूली की जगह कांटा बन गया। तो वो कहते हमारे देश से हिंदू निकल जाए, वो कहते फलाने निकल जाए, एक दो को सहन नहीं कर सकते। लेकिन जो सारी सृष्टि का पिता होगा, जिसके अंदर ये संस्कार भरे हुए होंगे कि वसुधैव सारी वसुधा हमारा कुटुंब है, वो किसी को धक्का नहीं दे सकता। अब बाप भी देखते हैं कि अनेक धर्म हो गए हैं तो लड़ते रहते, इसलिए सभी देह के धर्मों को निकाल देते हैं। बाप धक्का नहीं देते लेकिन क्या करते हैं, देह के धर्मों को निकाल देते हैं। कहते हैं जो भी धर्म वाले हैं सबको हम देह के धर्मों से निकाल देंगे। देह का धर्म माना, देह की तो सीमा होती है और आत्मा की सीमा नहीं होती, तो देह और देह का जो धर्म है उनकी सीमा होती। परमात्मा तो आत्मिक स्टेज वाले देवताओं का धर्म स्थापन करता है, ब्राह्मण धर्म कहो, देवता धर्म कहो या क्षत्रिय धर्म कहो, तीन धर्मों की स्थापना करता है और तीनों में आत्मिक स्टेज जिसमें हद का कोई सवाल नहीं। सारी दुनिया अपनी है तो जो देह के देह अभिमानी धर्म को पालन करने धारणाओं को पालन करने वाली आत्माएं उनको निकाल लेते हैं। सतयुग में सिर्फ देवता धर्म रहता है, ये सब ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है। हाथ में चित्र उठाए जाकर के वानप्रस्थियों को समझाना चाहिए, तीनों को समझाना चाहिए, बहुत बोल बोल करने वालों को नहीं समझाना चाहिए, बहुत भाषणवादी करने वालों को समझाने से कोई फायदा नहीं। जो वाणी से परे की स्टेज में पहुंच रहे हैं चुप हो गए, हेल्पलेस हुए पड़े हैं, जो मुझ गए हैं, वंचित हो चुके हैं ईश्वरीय प्यार से, उन आत्माओं को जाकर समझाना चाहिए। मंदिरों में जाना चाहिए, मंदिरों में कौन मिलेंगे? जड़ चित्रों की पूजा करने वाले भक्त मिलेंगे, उनसे पूछना चाहिए। किन से? मान लो शिव के मंदिर में गए तो शिव के मंदिर में जाकर के पुजारियों से या भक्तों से जाकर पूछना चाहिए, शंकर के आगे शिव दिखाते हैं तो जरूर वो शंकर से बड़ा हुआ ना? कौन? शिव। शिवलिंग आगे और शंकर बाजू में, अन्य देवताओं को भी आजू बाजू में चारों तरफ दिखाते हैं और मुख्य स्थान पर शंकर की मूर्ति रखते हैं। अगर शंकर भगवान का रूप है तो फिर उनके सामने शिवलिंग रखने की क्या दरकार है? ये सब सन्यासियों का फैलाव है। वो सन्यासी देवता धर्म की तो है नहीं। क्यों? वो तो घर घाट छोड़ते हैं, वो अपने को ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी कहलाते हैं, शिव का उनको पता नहीं है। तत्व तो रहने का स्थान है, वो फिर ब्रह्म और तत्व को भी एक नहीं मानते? अच्छा ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी हैं, फिर अपनों को शिव क्यों कहलाते हैं? शिवो अहम्, हम ही शिव हैं। इस क्यों का जवाब क्या हुआ? अपनों को शिव क्यों कहलाते? क्योंकि शूटिंग पीरियड में भी जो घर घाट छोड़ने वाले सन्यासी हैं, प्रवृत्ति मार्ग वालों का तिरस्कार करने वाले हैं, वो यहां भी शिवो हम बन करके बैठ जाते हैं। कहते हैं हमें ही श्री श्री 108 है, 108 श्रेष्ठ मणकों की माला बनाने वाले हैं। माला माना संगठन, संगठन का किला बनाने वाले। तो किसको फॉलो करते हैं? भक्ति मार्ग के सन्यासियों ने किसको फॉलो किया? आद्य शंकराचार्य को फॉलो किया। और आद्य शंकराचार्य भक्ति मार्ग वाला जो हुआ कलयुग के आदि में, उसने किसको फॉलो किया? शूटिंग पीरियड में जब परमात्मा शिव सुप्रीम सोल आता है तो जिस तने के द्वारा संसार में विश्व पिता या विश्वनाथ बन करके प्रत्यक्ष होता है उसको उन्होंने फॉलो कर लिया। وہ صرف مخ سے کہتے ہیں لیکن وہ روپ ہوتے نہیں ہیں. اور پرماتما جس تن میں پرویش کرتا ہے وہ ساکشات پرماتما کا سوروپ ہوتا ہے اور سنسار میں پرتکش ہوتا ہے. لیکن آتمائیں تو الگ الگ ہیں. شیو کی آتما الگ اور شنکر کی آتما الگ. شنکر کو پرم آتما نہیں کہہ سکتے, بھگوان نہیں کہہ سکتے, وہ بڑے سے بڑا دیوتا تو ہے. کیونکہ ڈاکٹروں کو ڈاکٹری پڑھانے والا ڈاکٹر جو پڑھنے والے ڈاکٹرز ہیں ان سے بڑا ہی ہوگا نا, نالج میں تو بڑا ہوگا ہی. ڈاکٹر ہی ڈاکٹر بنائیں گے, وکیل ہی وکیل بنائیں گے. تو دیوتا کون بنائے گا؟ جو آلریڈی ترمورتی میں سے ایک دیوتا ہو وہی دیوتا بنا سکتا ہے. منشی منشی کو دیوتا نہیں بنا سکتا. اچھا برہم جانی تتو جانی تو ہوئے, تو پوچھا آپ نے کو شیو کیوں کہلاتے ہیں؟ تو وہ الٹا فالو کر لیتے ہیں. برہم جانی مانے برہم مہت تتو, جہاں سب آتمائیں رہتی ہیں. آتما روپی پرماتما کے جو بچے ہیں وہ کہاں رہتے ہیں؟ برہما کے پیٹ سے ہی سب بچے پیدا ہوتے ہیں. تو برہما کہو چاہے برہم کہو, برہما ہو گیا ساکاری روپ اور برہم تتو ہو گیا نراکار. برہما بھی پرماتما شیو کے رہنے کا استھان ہے اور ماں کے پیٹ سے ہی سب بچوں کا جنم ہوتا ہے. تو وہ بھی برہما مہت تتو اور وہ بھی مہت تتو. برہما جیسا چولا, راجائی جیسا چولا, بڑھیا سے بڑھیا پرسنالٹی, اور کسی منشی کا ایسا تتو پنچ تتوں کا بنا ہوا چولا نہیں ہو سکتا جس میں پرماتما نے آ کر کے گیتا کا گیان سنایا 18 ورش دھارا پرواہ سے. گیتا ماتا بن کر کے پرتکش ہوا لیکن کس کے سامنے؟ برہما کمار کماریوں کے سامنے. برہما دوارا برہمن دھرم کی استھاپنا ہوتی ہے. پرشتن تو برہمن دھرم کی استھاپنا ہوئی, دیوتا دھرم کی استھاپنا نہیں ہوئی. پہلے شودروں کو کیا بنانا ہوتا ہے؟ برہمن, برہما دوارا. پھر سیکنڈ مشینری کون سی؟ برہمنوں کو پھر دیوتا بناتے ہیں شکشا دے کر. تو وہ سنیاسی سمجھتے ہیں شیو بھی ایک ہی ہے اور برہم بھی ایک ہی ہے. ارے ایک ہی ہے تو بھلا تین چیزیں اکٹھی کیوں کر دی؟ شیو کی تو لنگ روپ میں پوجا ہوتی ہے اور برہما اتوا تتو کی کوئی پوجا دکھلاوے؟ برہما کی کوئی پوجا دکھلاوے؟ نہ برہما تتو کی پوجا ہوتی نہ برہما کی پوجا ہوتی. شیو کی تو لنگ روپ میں پوجا ہوتی ہے, وہ تو ہے ہی برہما مہتتو تو رہنے کا استھان. برہما ماں کی گود میں تو ہر بچہ پالنا لیتا ہے, گود میں ہی بچہ پلتا ہے رہتا ہے, رہنے کا استھان. منشی تو بہت مجھے ہوئے, تم بچوں کو اب ہوشیار ہونا ہے, तुम सन्यासियों को भी कह सकते हो, तुम भले कितनी भी साधना करो परंतु तुम निर्वाण धाम में नहीं जा सकते। साधु है ना, नाम ही पड़ा साधु, माना साधना करने वाले। क्या साधते हैं, क्या साधने की कोशिश करते हैं? इंद्रियों को साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन कितना भी इंद्रियों को साधने की कोशिश करें लेकिन निर्वाण में वापस नहीं जा सकते, वाणी से परे नहीं हो सकते। तुम्हारे बड़े ईश्वर को बेअंत कहते आए और तुम फिर अपने को ईश्वर कैसे कहते हो? अच्छा, अगर तुम ईश्वर हो तो भला माया का भी अंत तुमको होना चाहिए। माया का अंत माना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन पांच विकारों का भी अंत होना चाहिए। तो इनके ऊपर तो कंट्रोल है नहीं। जब माया बेटी का ही अंत नहीं है और कहते हो जगत मिथ्या, तो फिर ईश्वर भी मिथ्या हो गया। उनसे भी कोई निकलेंगे जो असुल देवता धर्म का होगा, उन सन्यासियों में से झट उठा लेगा। घरदार छोड़ने वाले जो सन्यासी हैं, उनसे भी कोई ऐसे निकलेंगे, क्योंकि हर धर्म में कन्वर्शन होता गया। झट कौन निकलेंगे? जो देवता धर्म के थे पक्के, लेकिन अंतिम जन्म में एक दो जन्म में आकर के सन्यास धर्म में कन्वर्ट हो गए, वो झट उठा लेंगे। कोई तीन चार जन्मों से कन्वर्ट हुए होंगे तो इतना जल्दी नहीं निकलेंगे, क्योंकि तीन चार जन्मों का तो बहुत लेप छेप चढ़ जाता है, तो इतनी जल्दी उनकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। और एक दो जन्म का कोई कन्वर्ट किया हुआ होगा तो फट से उसकी बुद्धि में बैठ जाएगा, फिर एक बार पकड़ लेगा तो छोड़ेगा ही नहीं। क्या रफीउल्ला ऐसी कही है? पूर्व जन्म में कौन से धर्म में थे हैं रफीउल्ला? कौन से धर्म में थे हैं पूर्व जन्म में, इससे पहले वाले जन्म में हैं? नहीं है, नाम ही तुमने रखा हुआ है पूर्व जन्म का, अभी तक नए जन्म का तो नाम पता नहीं चला हुआ है। हमारी टाइटल तो पता चल गया कि ब्राह्मण। तो जो एक दो जन्म से कन्वर्ट हुआ होगा और अगर इस ज्ञान को सुनेगा तो फर्क से कन्वर्ट हो जाएगा। जो हमारे कुल का होगा उसके ऊपर बहुत जल्दी असर पड़ेगा, और जिसके ऊपर कोई असर न पड़े तो समझो ये हमारे कुल का नहीं है, या दूर का है। तो बताया, तीन चार जन्मों से कन्वर्ट हुए होंगे तो इतना जल्दी नहीं निकलेंगे, और ताजे गए होंगे तो झट से निकलेंगे। बाबा में कशिश है ना, बाप है चुंबक और आत्माएं हैं सुइयां। कोई पर अनेक जन्मों की कट चढ़ी हुई है, गहरी कट, और कोई पर कम कट है या कट नहीं है। तो अब सुइयों पर कट चढ़ी हुई है तो कट वाली सुई ऊपर कैसे आए? पंख टूटे हुए, कट वाली चीज को फिर क्या किया जाता है? हैं? मिट्टी के तेल में डाला जाता है। मिट्टी माना देह अभिमान। कट वाली चीज को फिर मिट्टी के तेल में डाला जाता है। बाबा भी इसे ज्ञान अमृत से सब की कट निकालते हैं। जब कट निकल जाती है तो आत्मा पतित से पावन बन जाती है। तो कट निकलने पर हम सच्चा सोना बन जाएंगे। तुम अभी पत्थरनाथ से पारसनाथ बनते हो, भारत पारसपुरी था। अब देखो सोने का दाम कितना चढ़ गया है, फिर वहां बहुत सस्ता हो जाएगा। कहां जो आने वाली नई दुनिया है, ब्राह्मणों की नई दुनिया का जो संगठन सामने आने वाला है, उसमें सोना या सच्ची आत्माएं बहुत हो जाएंगी। सच्चे ही सच्चे सब होंगे, झूठा होगा ही नहीं। पत्थर बुद्धि कोई नहीं होगा, सब क्या होंगे, पारसनाथ के बच्चे, पारस बुद्धि। अभी तो सोने का दाम कितना चढ़ गया है, मानो जिस चीज का दाम ज्यादा होता है वो चीज लोप हो जाती, देखने में नहीं आती। तो अब सोना भी देखने में नहीं आता, पहले तो हाथों में पांव में वो गले में पहने ही रहते थे, और अब नहीं आता देखने। तो जो सच्चे बच्चे हैं बाप के, सच्ची आत्माएं इस झूठ की दुनिया में अब देखने में नहीं आती। सोने का दाम कितना चढ़ गया, फिर बहुत सस्ता हो जाएगा। तो भारत जो अब पत्थरपुरी बना है वो फिर पारसपुरी बनेगा। हमारी बुद्धि में ये चक्र फिरता रहता है, सारा दिन चक्र बुद्धि में फिरता रहे, तब चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। दुनिया में इन बातों को कोई जानते नहीं है। तुम जानते हो सतयुग में जो राज्य करते हैं उन्हों के 84 जन्म होते हैं। क्या कहा, सतयुग में जो राज्य करते हैं उन्हें के 83 जन्म नहीं होते क्या है? सतयुग में सेकंड नारायण होगा, सेकंड नारायण से लेकर 8वां नारायण तक होगा, तो उनके 84 जन्म नहीं होंगे क्या है? हाँ, सतयुग का मतलब 100% सत्य। बाबा परसेंटेज की बात करेंगे या फुल परसेंट की बात करेंगे? बाबा जो हमको लक्ष्य देते हैं वो अधूरा लक्ष्य देते हैं या संपन्न दुनिया में जाने का लक्ष्य देते हैं? संपन्न दुनिया में। तो वो संपन्न दुनिया में जाने का जो लक्ष्य है वो है ही 21 जन्मों में से पहले जन्म में पहुंचने का, जो यही हमको बनना है। तो सतयुग में जो राज्य करते हैं उन्हों के 84 जन्म होते हैं। 100% सत्य युग, उसमें झूठ का 1% भी नहीं, 16 कला संपन्न भी नहीं। पूरे कितने? 16 कला संपन्न। फिर त्रेता वालों के जरूर कम जन्म होंगे। कहां 84 जन्म और कहां फिर 84 लाख कह दिए, फिर तो कल्प भी इतना लंबा होना चाहिए जो इतने जन्म हो। ये हैं सब गपोड़े। तो शास्त्रों में ये बात लिखी क्यों कि मनुष्य आत्मा 84 लाख जन्मों में भ्रमण करती है, 84 लाख योनियों में भ्रमण करती है जन्म लेते हुए। एक तरफ तो बाबा कहते हैं शास्त्रों में जो कुछ भी लिखा हुआ है, रामायण भागवत महाभारत में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको तुम वर्तमान समय टैली कर सकते हो, शास्त्रों में सब इस समय की बातें लिखी हुई है। तो 84 लाख योनियों में मनुष्य आत्मा तो जाती नहीं, तो क्यों कह दिया? हाँ, जैसे कीड़े मकोड़ों जानवरों जैसे संस्कार मनुष्य में भी होते हैं, तो कोई ऐसी भी मनुष्य आत्मा होती है जिसमें हर प्रकार के संस्कार समाये हुए हों, तो इसलिए कह दिया कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों का जन्म लेने के बाद फिर अंत में मनन चिंतन करने वाली मनु की औलाद मनुष्य का जन्म मिलता है। वो तो 84वां जन्म ही। तो ये बात किसके ऊपर लागू होती है? जरूर कोई ऐसी भी आत्माएं हैं पूरे 84 जन्म लेने वाली हर धर्म की आत्माओं के जो बीज हैं, बीज का तो कभी नाश नहीं होता। वो बीज रूप आत्माएं सारी मनुष्य सृष्टि के पिता के रूप में है, तो उनमें ये विशेष विशेष प्रकार की योनियों के आचरण करने के गुण अवगुण भरे हुए हैं। तो इसलिए शास्त्रों में कह दिया कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में भ्रमण करती है।
ऐसी कई आत्माएं हैं,
कई
ऐसी बीज रूप आत्माएं, कई
कामी कुत्ते वाली जैसी होंगी, वो तो कुत्ते जैसे आचरण ज्यादा करेंगी, और भी जितने कामी जीव जंतु हैं उनके जैसा विशेष आचरण करेंगी। कोई ऐसी भी हैं जिनमें क्रोध के आचरण ज्यादा हैं, तो बिल्लों की तरह लड़ने वालों का आचरण करेंगी। तो उनके ग्रुप्स हैं, कोई क्रोधी है, कोई कामी है, कोई मोही है, लेकिन एक ग्रुप ऐसा भी है जिसमें सारे विकार अति के भरे हुए हैं। वो कौन सा हुआ? बंदर। तो राम ने कौन सी सेना ली? बंदरों की सेना ली। वो फिर सबके बाप हो गए। तो कहां 84 जन्म, कहां 84 लाख कह देते हैं? फिर तो कलब भी इतना लंबा होना चाहिए जो इतने जन्म हो हैं। तो ये सब गपोड़े, माना कोई स्थूल रूप में ऐसा 84 लाख योनियों का जन्म नहीं होता। हमेशा पहले तो चित्र सामने दे देना चाहिए। पैसा तो कभी तुम नहीं मांगना किसी से, क्या बाबा बात किससे करते हैं? रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं, देह अभिमानी सांडों से बात ही नहीं करते। तो तुम किससे कहा? रूहानी बच्चों से कहा, जो 84 जन्म लेने वाली रूहानी आत्माएं हैं, रूहानी स्टेज में टिकने वाली आत्माएं, तो उनसे कहा कि तुम पैसा तो कभी नहीं मांगना। माना पैसा मांगने वाले उस रूहानी स्टेज में टिकने वाली आत्माएं नहीं होंगी जो बाप से डायरेक्ट वर्षा पाएंगी। क्या चाहे डायरेक्ट पैसा मांगे चाहे इनडायरेक्ट पैसा मांगे, मांगना तो हुआ ना, तो तुम पैसा तो कभी नहीं मांगना। इनडायरेक्ट मांगना होता है कटोरा लटका दिया, यहाँ लिख दिया इसमें डालो सिल्वर का कटोरा कहो, या नहीं लकड़ी की पेटी टांग दो, बात एक ही है। तुम्हारा काम है उनको देना। किनको? है ना, तुम्हारा काम है मांगना नहीं, तुम्हारा काम है देना। तुम बच्चे किसके हो? दाता के बच्चे हो। कुछ भी देना होगा तो वो आपे ही देंगे, तुम उनसे कभी मत मांगना। सहयोग की भीख मांगना ये भी क्या है? ये भी तो मांगना हुआ। कोई दाम पूछे तो बोलो बाबा तो गरीब निवार है, गरीबों के लिए फ्री बांटा जाता है, बाकी साहूकार जितना देंगे उतना हम और भी छपाएंगे। पैसा कोई हम अपने काम में थोड़े ही लगाएंगे, हम परमात्मा बाप के पुरुषार्थी बच्चे हैं। जो पुरुषार्थी होगा वो तो अपने पुरुषार्थ से खुद ही इतना कमाने योग्य है कि भरपूर हो सकता है, उसको मांगने की दरकार है नहीं। यहाँ तो राजयोग सीखने वाले बच्चे हैं जिन्होंने अपने अंदर ऐसे संस्कार भरे हैं कि इसी जन्म में सिपाही बाबर और बढ़कर के क्या हो जाते हैं, पुरुषार्थ करके एक ही जन्म में सम्राट बन करके बैठ जाते हैं। तो वो किसी से भीख मांगेंगे और अपने लिए मांगेंगे? ये तो कभी नहीं हो सकता। तुम्हारा काम है देना। पैसा हम कोई अपने काम में नहीं लगाते हैं, जो मिलता है वह जनता के काम में ही लगाया जाता है। साहूकार ही तो धर्मशाला आदि बनाएंगे। हाँ, गरीब भी बना सकते हैं, इसमें खर्चा कुछ भी नहीं है। समझो कहते हैं कि हम सेंटर खोलूं अथवा ये गाडली यूनिवर्सिटी खोलूं, तो ऐसी गाडली यूनिवर्सिटी से 3-4 ने भी अच्छा फल पा लिया तो अहो सौभाग्य उन खोलने वालों का। इसमें फराक दिल होना चाहिए। बाबा देखो कितना फराक दिल है, तकपन लेता है और बादशाही दे देते हैं। सपू तो बच्चे ही बाबा, तुमको सतगुरु का शो करना है। काम अथवा क्रोध में आए तो गोया सतगुरु की निंदा कराई, फिर पद नहीं पा सकेंगे। बहुत संभाल करनी चाहिए। बाप कहते हैं बिख का वर्षा, तो बाप से पति से 63 जन्म लेते आए। अब ये पारलौकिक बाप पति अमृत का वर्षा तुमको देते हैं। तुमको सभी धर्म वालों को ज्ञान देना है, मुसलमानों को भी समझाओ। तुम खुदा की बंदगी करते हो तो जरूर बंदे ठहरे ना, भला खुदा कहाँ है? खुदा ही रचयिता और रचना का नॉलेज बता सकते हैं। वो तो रहते ही शांति धाम है, उनको याद करने से तुम शांति का वर्षा ले सकते हो। वर्षा लेते लेते विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम खुदा के पास चले जाएंगे। ये ज्ञान सभी धर्म वालों के लिए है, ये है बिल्कुल नई बात। शास्त्र तो है भक्ति मार्ग के, दर दर धक्का खाना, दामन खिलाना, तीर्थों पर जाना, भक्ति मार्ग में क्या होता है? ब्राह्मणों की दुनिया में भी ये भक्ति मार्ग चलता है क्या? शूटिंग पीरियड में शास्त्र पढ़ना, उनको अपने जीवन में अपनाया ना अपनाए, लेकिन सिर्फ पढ़ना है, सुनना है और दूसरों को सुनाना है। रोज नियम पूर्वक दर दर धक्का खाना। आज एक गुरु के पास धक्के खाए रहे हैं, कल दूसरे गुरु के पास धक्के खाना। ये जोनल इंचार्ज नहीं तो दूसरा जोनल इंचार्ज सही। ब्राह्मण खिलाना, भक्ति मार्ग में क्या होता है? ब्राह्मण खिलाना, ज्ञान तो है नहीं तो क्या करेंगे? खिलाने पिलाने से खुश करेंगे, खुश रहेंगे। तीर्थों पर जाना, तीर्थ कौन से हैं? जहां जड़ चित्र रखे हुए होते हैं। भक्ति मार्ग में जड़ चित्रों के तीर्थ होते हैं जहां धक्के खाते हैं, और ज्ञान मार्ग में जड़ तीर्थों पर धक्के खाने की बात नहीं है। यहां तो एक ही ज्ञान से बेड़ा पार हो जाता है, एक ही ज्ञान और एक का ही ज्ञान, और कहीं जाने की दरकार ही नहीं रहती कि एक जगह जाओ फिर दूसरी जगह जाओ। तो मीठे मीठे बच्चे, अब तुम्हें स्वर्ग में चलना है। जो विष पीने वाले हैं वो बिघन तो जरूर डालेंगे। क्या कहा? बिघन कौन डालेंगे? जो बिख का वर्षा त्याग नहीं सकते वो बिघन जरूर डालेंगे, क्योंकि सारी दुनिया धुंधकारी है। क्या नाम रखा? धुंधकारी, धुंध मन धूल, धूल पैदा करने वाले, कारी माने करने वाले, धुंध माने धूल, धूल माने देह अभिमानी की धूल पैदा करने वाले। देखो भारत में पवित्रता नहीं है तो धक्के खाते रहते हैं, कितने हंगामे हैं, स्ट्राइक करते रहते हैं, गवर्नमेंट की नाक में दम चढ़ाए देते हैं। गवर्नमेंट साफ कह देती है कि इतना खर्चा हम लावे कहां से, तो वह कहते हैं तुम लोग मौज उड़ाते हो, भले धन इकट्ठा करते हो। गवर्नमेंट कह देती है कि हम इतना खर्चा कहां से लावे, तो कहते तुम मौज उड़ाते रहते हो, धन इकट्ठा करते रहते हो, हमने क्या गुनाह किया है? हमको तो तलब चाहिए, तनख्वाह चाहिए। तो तनख्वाह बढ़ाने के लिए स्ट्राइक करते रहते, तो धंधा ठहर जाता है। तो ये तो सब होना ही है। कहाँ सब्जी नहीं मिलेगी, कहाँ दूध नहीं मिलेगा, जहाँ तहाँ खिचपिट होती रहती है। ये सब हंगामा होकर के फिर शांति हो जाएगी। कौन सी सब्जी नहीं मिलेगी और कौन सा दूध नहीं मिलेगा, इसकी शूटिंग कैसे होगी है? हाँ, दूध नहीं मिलेगा, सब्जी बना, मन तरोताजा बना रहे, शब्द बना रहे, सरसब्द। हाँ, तो खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि जब आपसी व्यवहार खराब हो जाता है तो खुशी गायब होने लगती। देखो कहाँ बरसात नहीं पड़ती है तो यज्ञ रचते हैं, कहाँ बहुत अशांति होती है तो पीस के लिए यज्ञ रचते हैं। परंतु पीस के लिए तो एक ही भगवान है, वो जब तक न आए तो शांति का दान कौन देवे, फिर देने वाला तो वो एक ही है। कौन? एक बिंदु, एक ही बिंदु है, दूसरा बिंदु नहीं। क्या बिंदु बिंदु आत्मा है तो अनेक, बिंदु बिंदु आत्माएं अनेक हैं, कीड़े मकोड़ों की भी आत्माएं क्या हैं? बिंदु। और मनुष्यों की आत्माएं भी बिंदु, पशु पक्षियों की आत्माएं भी बिंदु, लेकिन इतने सब बिंदुओं में से एक बिंदु है क्या? शांति दाता, सुख दाता, ढूंढो। कहाँ ढूंढोगे? कैसे पता चलेगा कि वो एक बिंदु कौन सा है? बिंदु बिंदु आत्मा है तो सब एक जैसी, उनमें तो कोई अंतर है नहीं, तो पता कैसे चलेगा वो बिंदु कहाँ, कौन, कैसे याद करें, कहाँ याद करें? याद से, याद से याद करें वो देने वाला तो एक ही है। देखो तुम कितने लाड़ले बच्चे हो, लाड़ले किस लिए हो? कि तुमने उस एक सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु को जान लिया, पहचान लिया। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे ऐसे नहीं समझो कि मेरे में कोई गुण नहीं, मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, हर आत्मा में, हर बाप के बच्चे में कोई न कोई एक विशेष गुण तो है जरूर। सबसे बड़ा विशेष गुण कौन सा बताया बच्चों का? बाप की पहचान। दुनिया ने नहीं पहचाना, लेकिन तुम बच्चों ने बाप को पहचान लिया। दुनिया ने नहीं पहचाना, हम बच्चों ने बाप को पहचान लिया। बाप को पहचानने वाले, पूरा पहचान करने वाले कितने बच्चे होंगे दुनिया में? 500 करोड़। और पहचानने वाले बच्चे अंत में कितने होंगे? ज्यादा से ज्यादा अंत में पहचानने वाले, बाप को पूरा पहचानने वाले और बाप से प्राप्ति करने वाले बच्चे कितने होंगे?